हर एक बंदे का एक ड्रीम होता है कि जैसे सारे ऑस्ट्रेलियंस निकलते हैं सुबह सुबह सूट पहन के आराम से हेडफोन लगा के कॉफी लेते हुए जाते हैं काम पे, काम से वापस घर आते हैं। मैंने भी वही लाइफ सोची थी।
आपने SBS हिंदी के माध्यम से हाल में ही सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए लोगों को 50 से 70 हजार डॉलर देने के लिए लुभाया जाता है, और जब लोग ये राशि देने के लिए तैयार हो जाते हैं तब कईयों को बीच मझधार में ही छोड़ दिया जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसे ऑफर्स, ऐसे लुभावने वादे मिले और उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया और चले गए वापस भारत कुछ बनने के लिए। कुणाल, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
कुणाल, हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे?
मैं अहमदाबाद में रहने वाला लड़का हूँ। मैंने 12th ग्रेजुएट करने के बाद सोचा कि मुझे अब्रॉड स्टडी करना है। मैंने बहुत सारी जगहों पे पूछताछ की कि भाई कौन सी जगह सही है क्या नहीं है, पर अंदर से एक आवाज आती है कि भाई नहीं, मुझे मैंने सोचा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है और आगे कुछ करना है। बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, मुझे वो चीज अच्छी लगी और मैं ऑस्ट्रेलिया बैचलर्स करने के लिए आ गया। वहां पर मैंने BITPS किया, ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली, तो सोचा कि अपने देश ही लौट जाना काफी अच्छा रहेगा। आज यहाँ पे मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ मेरे फील्ड के अंदर। IT कंपनी में हूँ, वहां पे मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लीड के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है आगे, मैं देख सकता हूँ कि हाँ, मैंने जो भी पाया वहां से मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ उसके लिए।
कुणाल, आप 2009 से 2014 तक ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहे, तो इस
हाँ।
जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तब तो तक मैं समझ सकता हूँ कि आप जॉब्स कर रहे होंगे जिस तरीके के जॉब्स यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, मैकडोनल्ड, 7-Eleven या कार वॉश वगैरह में। लेकिन जब आपकी पढ़ाई पूरी हुई उसके बाद जो आपने स्ट्रगल का पीरियड बताया, जहां आपने यहां जॉब ढूंढने शुरू किए ऑस्ट्रेलियन मेन मार्केट में अपने फील्ड में, वो कैसा रहा अनुभव?
वो एक टाइम था जब मैं सोच रहा था कि अब ग्रेजुएशन खत्म हो गया है और मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने पढ़ाई का ऑप्शन नहीं चूज किया क्योंकि ऑलरेडी बैचलर में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो उस दौरान मैंने कई कई कॉन्टेक्ट लगाए जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे। फिर लोकल वेबसाइट्स के थ्रू सर्च किया, एप्लीकेशंस डाले, अच्छा खासा रेज्यूमे बनाया, इंटरव्यूज के कॉल भी आए, इंटरव्यू देने के लिए भी गया। कई जगहों पे मैं टेक्निकल राउंड भी क्लियर कर लिया, प्रैक्टिकल था वो भी क्लियर कर लिया, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है वो भी क्लियर कर लिया था। आखिर में मैं जब HR राउंड में पहुंचा तब उन्होंने मुझे बताया कि क्या आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। मैंने बोला नहीं, मेरे पास अभी नहीं है, पर मैं अप्लाई करूंगा, अगर मुझे जॉब मिलती है यहाँ पे तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि बेस्ड ऑन द वर्क एक्सपीरियंस मैं अप्लाई कर लूंगा बाद। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको ऐसे जॉब नहीं मिलेगी, आपके पास अगर परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, वो स्ट्रगल का दौर था जो शुरू हुआ दिमाग में घूमना कि यार परमानेंट रेसिडेंसी के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। कई जगह पे मैंने पूछा, इन्फॉर्मेशन ली वेबसाइट से इमिग्रेशन की, फिर भी मेरे पॉइंट्स कम पड़ रहे थे क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था।
आपने जैसा कि हमारे SBS हिंदी के माध्यम से जाना ही होगा कि कई लोग 50,000 से 70,000 डॉलर के बीच दे रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए, तो कभी आपको ऐसा कोई लुभाने वाला ऑफर नहीं मिला कि आप हमें दे दीजिए 50,000 डॉलर और हम आपको परमानेंट रेजिडेंसी दिला देंगे?
वैसे मेरे पास कम से कम 4 से 5 ऑफर डिफरेंट तरीके से आए थे कि जहाँ पे मुझे बोला गया कि आप अपना रेज्यूमे भेजिए, हम आपको चेक करते हैं, आपका फिर इंटरव्यू लेंगे, फिर वो बात बनती नहीं है। वहां पे फिर क्या होता है कि आपको मोबाइल नंबर दिया जाता है कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एट योर कन्वीनियंट टाइम, हम आपसे बात करेंगे कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं आपके लिए। तो उस वक्त उनका जब मैंने फोन किया शाम के टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो ऐसा है कि हम लोग भी यहाँ पे स्ट्रगल करके इतना अचीव करके बैठे हैं, ठीक है, हमने भी बहुत कुछ खोया है कुछ पाने के लिए, तो आप एक काम कीजिए कि हम आपको 457 पे स्पॉन्सर कर देते हैं। उससे दो चीजें होंगी कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल सकती है 2 साल के बाद, और आपको लीगली एक वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ये पहली दफा ये सुना था, मैं एक्साइटेड भी था कि यार चलो ये अच्छी कंपनी है जो मुझे ऐसा भी ऑफर कर रही है कि आपको स्पॉन्सरशिप वीजा भी देंगे और साथ साथ में मुझे मेरा काम भी करने को मिलेगा, तो वो मेरे लिए एक्सपोजर था। बाद में मुझे पता चला कि ही सेड कि भाई मुझे आप $70,000 यहाँ का भी रेट है, आप मुझे बैंक ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं। मैंने बोला वो मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको 70,000 क्यों दूं किस चीज के लिए। उन्होंने बोला कि भाई देखो ये एक सिस्टम है, अगर आपको सीधी तरीके से पीआर नहीं मिलती तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो, उसमें सिर्फ आप और हम इन्वॉल्व रहेंगे और किसी को कुछ पता चलेगा नहीं। मैंने सोचा, मैंने उसको बोला कि भाई मैं आपको थोड़ी देर बाद या फिर कल परसों मैं आपको कॉल करता हूँ। उसके बाद मैंने सोचने के बाद मैंने कॉल नहीं किया था उनको, क्योंकि $70,000 मेरे लिए बहुत सही तरीके से पढ़ा हूँ, सही तरीके से मैंने ग्रेजुएट किया है, सही तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें मुझे ब्राइब देने का कोई हक नहीं बनता।
जिन लोगों ने पैसा मांगा या जो ये कंपनियां थी, क्या ये भारतीय थी कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी थी?
ये ज्यादातर भारतीय कंपनियां होती हैं जो वहां पे जाके बसे हुए हैं, जो सालों से रह रहे हैं, जो कई अच्छे नाम है उनमें,
जी।
जो ये बातें करते हैं कि यू नो कि अगर आपको नहीं मिलता इस तरीके से तो वी हैव अदर ऑप्शन फॉर यू एज वेल, बट फॉर दैट यू नीड टू डू समथिंग दैट नो वन कैन रिफ्यूज।
कुणाल, मैं ये जानना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे हैं जो $50,000 से $70,000 दे देते हैं और फिर ये कंपनियां फ्रॉड निकलती हैं, ये कंपनियां या लोग फ्रॉड निकलते हैं, उनका पैसा लेके भाग जाते हैं या 2 साल के अंदर ही उन्हें हटा दिया जाता है परमानेंट 457 से भी। उन लोगों को वनरेबल विक्टिम्स के नाम पे बुलाया गया है, आप सहमत होंगे इससे?
नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस चीज से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो खुद एक चीज है कि अगर आप ब्राइब देते हो, अगर आप 70,000 या 50,000 जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट है आप उस बंदे को दे देते हो बिना जाने बिना सोचे कि मेरा आगे का भविष्य क्या है और किस तरीके से फाइल प्रोसेस होगा, क्या कुछ भी हो, अगर आप पैसा देते हो दैट मीन्स यू आर अ क्रिमिनल, जो सामने वाला क्राइम कर रहा है उसमें आप पूरे के पूरे भागीदार हो।
अच्छा कुणाल, आपने वापस जाने का जब फैसला लिया, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आप एक सपना लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया में कि यहाँ काम करेंगे, यहाँ सूट बूट पहन के अपने ऑफिस जाएंगे, यहीं आपकी फैमिली होगी।
हाँ।
जब आप वापस गए तो क्या रिएक्शन था आपके दोस्तों का, पेरेंट्स का?
ठीक है, दोस्त मेरे उतने ज्यादा यहाँ पे खास थे नहीं, जो भी बचे थे वो 2-3 गिने चुने दोस्त ही है जो अभी इंडिया में है, और फैमिली का ऑलवेज मुझे सपोर्ट रहा है सारी चीजों में। फैमिली ने मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट किया था वहाँ पे कि अगर, क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे इंडिया में अहमदाबाद में गुजरात गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं, सो ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो एक तरफ से जो भी हुआ उसको बाहर का एक्सपोजर भी मिल गया, वहाँ ये वहाँ पे पढ़ाई भी की, उसने जो नहीं देखना था वो भी देखा, ब्राइब के लिए उसको ऑप्शन भी मिला था बट ही डिडंट ऑप्टेड फॉर, क्योंकि फैमिली का सोच थे उसने मना कर दिया या क्या था, पर जो भी था वो सही था उस टाइम के। सो पेरेंट्स हैप्पी थे कि कुछ ना कुछ यहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज है अच्छी, बहुत नामचीन कंपनीज है जो ऑस्ट्रेलिया में भी उनका बेस सेटअप है, तो यहाँ से प्रोजेक्ट के लिए भी मैं बाहर जा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, और मैं आने के, मुझे नहीं पता, मैं 23 जनवरी 2014 में इंडिया में आया और मैंने पहला दिन जॉब पे था 17 फरवरी 2014।
अच्छा कुणाल, मैं ये जानना चाहूंगा, जो लोग ऐसे माध्यम से पैसा देके जो परमानेंट रेजिडेंसी ले रहे हैं या जो करवा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपके रूल्स में, जो भी ऑस्ट्रेलिया के अभी करंट रूल है, रेगुलेशंस है, जो गवर्नमेंट लोगों के लिए कर रही है, वो एक तौर से सही है। ब्राइब देने के बाद अगर भी आपको लगता है कि आपका एक ही मोटो था कि मुझे वहां पे जाके सेट होना है और आगे का देख लेंगे, तो फिर उनका उनके सिर पे है, जो भरेंगे वो फंसेंगे, वैसा ही है, जो निकल गए वो निकल गए। सो मैं सीधा ही बोलूंगा कि अगर करना है तो अपने रिस्क पे करना, अगर नहीं करना है तो अपने दम पे आगे बढ़ने का ध्यान रख।
कुणाल, SBS हिंदी से बात करने के लिए और अपनी कहानी हमारे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।